प्रांजल सबके सामने बैठी थी। वो खामोश थे और पिछले कुछ देर से कुछ भी नहीं बोली थी। सबने उसे बोलने के लिए कहा भी नहीं, सब प्रांजल के अपने आप बोलने के इंतजार में थे। निक काफी देर से प्रांजल को देख रहा था। काफी देर तक उसे देखने के बाद उसने अपना फोन निकाला और ग्रुप में मैसेज किया। निक ने मैसेज में लिखा, हो सकता है वो अपने जीजू के लिए जानकारी इकट्ठा कर रही हो और इसकी बहन या भांजी जो भी है इसको पता ना हो। वो होशियार लड़की है तो उसे कुछ भी एक्सेप्ट किया जा सकता है। मुझे लग रहा है उसने हमारी तरह इसे और पूरी फैमिली को बेवकूफ बनाया है। उन दोनों ने सब कुछ आपस में मिलकर प्लान किया होगा और फिर उसी के हिसाब से काम कर रहे होंगे। एमा ने मैसेज पढ़ा और रिप्लाई किया, हाँ अब तो मुझे भी यही लग रहा है। बाकी हम बिना पूरा सच जाने किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहिए। एक तो लड़की भी काफी देर से खामोश है और कुछ भी नहीं बोल रही। ये ऐसे ही बिना मतलब का सस्पेंस क्रिएट कर रही है। जिनी प्रियल के सिवाय किसी की सपोर्ट नहीं करना चाहती थी। उसने लिखा, मैंने कहा था ना प्रियल इनोसेंट है और देखो वही हुआ। ये साफ तो सबके सामने है ना, वो दत्ता की बेटी नहीं है। बाकी उसका और मामला है, हमसे इससे कोई लेना देना नहीं। जिनी जानती थी इंस्टीट्यूट वाला चक्कर उन पर पड़ रहा था, मगर वो भी इस बारे में नहीं बता सकती थी। अगर बहन इस बारे में कुछ भी बताती तो सबसे पहले निक उस पर गुस्सा होता क्योंकि उसने बात छुपाई। इसके बाद बात और खुलती और ये बात सामने आती कि प्रियल निक को पसंद करती थी तब यहाँ आई, तो फिर बात का बतंगड़ पूरी तरह से तैयार था। एमा ने तुरंत जिनी को टैग किया और रिप्लाई दिया, इससे वो इनोसेंट प्रूफ नहीं हो जाती है। अभी भी सब गड़बड़ ही लग रहा है। शातिर लोमड़ी अपने शिकार को कब्जे में करने के लिए कुछ भी कर सकती है और यही प्रियल के मामले में लग रहा है। निक ने मैसेज किया, एक बार के लिए प्रांजल के बोलने का इंतजार करो। इस लड़की को इतना भी नहीं सोचना चाहिए। अब तक तो ये अपनी बात 4-5 बार बता देती। पता नहीं कोई बहाना बना रही है या जानबूझकर ऐसा माहौल क्रिएट कर रही है जहां सब बात जानने के लिए मर पड़े। रोहन, एवा और आर्यन तीनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, मानो कहना चाह रहे हों, अब हमसे भी सब्र नहीं हो रहा। प्रांजल ने हल्की आवाज में बोलना शुरू किया, बात यह है कि उसने पूरी सच्चाई बताने के बारे में सोचा, लेकिन जब बस इतना ही बोली तो उसे सामने निक का चेहरा दिखाई दिया। वो गुस्से में दिख रहा था और ऐसे लग रहा था जैसे प्रियल की सच्चाई सामने आई तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। ये देखते ही उसने तुरंत सच्चाई बताने का इरादा छोड़ दिया और बोली, आप लोगों को जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मुझे नहीं पता ये गलतफहमी कैसे हुई है, मगर सच्चाई ये नहीं है। दीदी चंडीगढ़ है, अगर आप लोगों को यकीन नहीं है तो आप प्रियंका दीदी के कॉलेज में कॉल करो। छोड़ो इन सबको, कॉल करोगे तो सच्चाई अपने आप सबके सामने आ जाएगी। निक संदेह की नज़रों से प्रांजल को देखने लगा। रोहन, ये मैडम जो बोल रही है इस पर एक बार के लिए गौर करना। मुझे भी जानना है आखिर सच क्या है। कॉल करो और देख लो सच क्या है। जो भी सच होगा वो कॉल करने पर अपने आप पता चल जाएगा। प्रांजल ने नकली कॉन्फिडेंस दिखाया और अपनी कुर्सी पर पीछे होते हुए बोली, हाँ मिला लो कॉल। रुको, मैं ही नंबर देती हूँ आपको। जब ऐसा कुछ है ही नहीं तो डर किस बात का। प्रांजल ने नंबर निकाले और रोहन को प्रियल के डिजाइनिंग कॉलेज का नंबर दे दिए। रोहन ने नंबर लिए और कॉल कर दिया। कॉल करने के बाद उसने फोन स्पीकर पर लगा दिया। चंडीगढ़ कॉलेज रिसेप्शनिस्ट ने फोन उठाया और सामने से बोली, हेलो, दिस इज क्रिएटिविटी डिजाइनिंग कॉलेज ऑफ चंडीगढ़, हाउ कैन आई हेल्प यू। रोहन ने यह सुनते ही सबके चेहरों की तरफ देखा और फिर कहा, हेलो, आई एम टॉकिंग फ्रॉम वन ऑफ योर स्टूडेंट्स फैमिली। कैन आई टॉक टू मिस प्रियल निशांत शर्मा? शी इज फर्स्ट ईयर स्टूडेंट। प्रियल का पूरा नाम सुनकर निक चौंक गया क्योंकि यही नाम उसने प्रियल के एडमिशन फॉर्म पर पहले दिन पढ़ा था। तब जब वो उसका डेटा चेक कर रहा था, नाम सेम टू सेम मैच कर रहा था और ये बात उसे अचरज से भर रही थी। निक ने सोचते हुए कहा, इसका मतलब प्रियल सही बोल रही थी, उसकी आइडेंटिटी भी रियल है, तो फिर उसने हम सबसे छुपाया क्यों? इंसान तभी कुछ छुपाता है जब वो गलत हो। जरूर यही वजह है जो प्रियल ने हम कुछ नहीं बताया। इस लड़की की जो जो चीज सामने आ रही है उसके बाद इस पर विश्वास करने का सवाल ही नहीं उठता। निक, तुम अपनी बात पर टिके रहो, वो लड़की विश्वास के लायक नहीं है। धोखेबाज है, दिलों से खेलने वाली है और भी पता नहीं क्या क्या है। इन विच स्ट्रीम सर? रोहन से पूछा गया। डिजाइनिंग, रोहन ने जवाब दिया। ओके, वेट, सामने से कहा गया और फिर एक वेटिंग टोन बचने लगी। प्रियल शर्मा, जो कि प्रियल की क्लासमेट थी और अर्जुन ने जिसका एडमिशन डिजाइनिंग कॉलेज में प्रियल की जगह करवाया था, वो फोन के दूसरी तरफ आ गई और आते ही पूछा, हेलो, कौन? प्रियल की आवाज पहचान में नहीं आ रही थी क्योंकि दूसरी तरफ से वायर्ड फोन था जिसमें आवाज के साथ करकर का साउंड होता है और आवाज बदलती रहती है। शालू ने पूछा, हु आर यू? प्रियल सामने से बोली, आपको किससे बात करनी है? मैं प्रियल शर्मा बोल रही हूँ। सबने ये सुना तो सब पूरी तरह से चुप हो गए। शालू और रोहन दोनों आगे कुछ बोले, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। प्रियल सामने कुछ देर तक तो जवाब के आने का इंतजार करती रही, मगर जब काफी देर तक जवाब नहीं आया तब वो बोली, लगता है किसी और की फैमिली का कॉल कनेक्ट हो गया है। रुकिए, मैं रिसेप्शनिस्ट से बात करके आपकी सही जगह बात करवाती हूँ। और इसके बाद कॉल कट हो गया।
सभी चौंके हुए थे, वो भी इस बात को लेकर कि प्रियल एक ही वक्त में दो अलग देशों में कैसे हो सकती है और वो एक साथ दो इंस्टीट्यूट में एडमिशन कैसे ले सकती है। दोनों इंस्टीट्यूट अलग अलग हैं और अलग अलग देशों में भी स्थित हैं। प्रांजल ने चैन की सांस ली, क्योंकि कहीं ना कहीं उसने खुद को सही प्रूफ कर दिया था, जबकि वो इस बारे में नहीं जानती थी कि उसने मामले को और बिगाड़ दिया। रोहन और शालू के लिए तो ये मसला सुलझ गया, मगर निक और उसके साथियों के लिए पूरा रायता फैल गया। प्रांजल बोली, देखा, मैं सही बोल रही थी, और पता नहीं ये लोग क्या क्या बोल रहे हैं। उसने ये बात रोहन और शालू के लिए कही थी। मुझे नहीं पता कहाँ गलतफहमी हुई है और कैसे हुई है, मगर ये जो भी हुआ है मेरे पास अब इसका कोई इलाज नहीं। शालू ने अचानक अपना अंदाज बदला और उससे कहा, प्रांजल मुझे तुम पर सच में बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। तुम ये बेवकूफ बनाने का काम ना घर वालों के सामने करना। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि वो प्रियंका की आवाज नहीं थी, ऐसे में हम कैसे मान लें सामने जो भी हमसे बात कर रही थी वो प्रियल ही थी। लो, प्रांजल ने हैरानी से कहा, अब ये बोला क्या बात हुई? अरे गला खराब होगा उसका, सफर में पानी कम मिलता है तो गला खराब हो जाता है। फिर इंस्टीट्यूट में फोन भी तो दूसरे इस्तेमाल करते हैं, कुछ भी हो सकता है। अब इसमें आवाज वाला पंगा कहाँ से आ रहा है? अब पूरा मामला झालमझोल हो चुका था। रोहन के दिमाग से भी चीज नहीं जा रही थी और शालू पे इस पर विश्वास करते ही नहीं बन रही थी। निक और उसके साथी भी प्रांजल को संदेह की नजरों से और गुस्से से देखने लगे। प्रांजल को सबके चेहरे देखकर फिर से लगा अब मामला और भी ज्यादा बिगड़ रहा है और वो इसे नहीं संभाल सकती, तो वो खड़ी हुई और शालू से दूर होकर वहां से निकल गई। प्रांजल निकली तो शालू भी खड़ी हुई और उसके पीछे पीछे चली गई। रोहन अपनी जगह पर बैठा रहा और उसने ना जाने का फैसला किया।
निक अपना हाथ टेबल पर मारता हुआ बोला, पूरा रायता फैल गया। मुझे लग रहा है वो लड़की और उसकी फैमिली फ्रॉड है, सबके सब मिलकर हमसे धोखा दे रहे हैं। देखो ये भी कैसे बिहेव कर रही थी, इसने हम लोगों को गलत साबित कर दिया, जबकि अच्छी तरह से जानती है कि फोन पर वो दूसरी लड़की प्रियल नहीं थी। मैं उसे ज्यादा नहीं जानता, मगर उसकी आवाज तो पहचान सकता हूँ ना। चाहे गला खराब हो चाहे फोन खराब हो, आवाज में इतना फर्क कभी नहीं आता। कॉम डाउन निक, रोहन बोला, पहले मुझे लग रहा था ऐसा कुछ भी नहीं है, मगर अब तो मुझे भी लग रहा है कहीं ना कहीं कुछ तो कुछ गड़बड़ है। परी और प्रियल दोनों ही ऐसी नहीं है, जबकि मिस्टर दत्ता के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, वो जो है वो सबके सामने है, मगर किसी की फितरत का कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। हो सकता है मिस्टर दत्ता ने इन दोनों लड़कियों के साथ मिलकर कोई योजना बना रखी हो, बाकी मेरा दिमाग तो ऐसा कह रहा है, जबकि दिल अभी भी इस बात के लिए नहीं मान रहा। एमा उससे बोली, दिल नहीं मान रहा तो उसे भी मनाओ, तुम्हें कुछ नहीं पता है रोहन, तुम्हें भी गड़बड़ सब लग रही है क्योंकि कुछ गड़बड़ है, वरना अगर कोई गड़बड़ नहीं होती तो ये गड़बड़ कभी नहीं लगती। मुझे इनका कोई बड़ा ही प्लान लग रहा है। निक सभी से बोला, देखो एली की जान गई है, वो भी दत्ता की वजह से, मैं उसे कभी माफ नहीं कर सकता। मुझे उसके अगेंस्ट बहुत से प्रूफ इकट्ठे करने हैं, फिर बात सिर्फ उसकी नहीं है, एली के अलावा और भी बहुत से लोगों की जान गई है, जिसके पीछे एक ही शख्स जिम्मेदार है, प्रभास दत्ता। वो कुछ भी कर सकता है, ऐसे में हो सकता है खुद को बचाने के लिए उसने अपनी फैमिली और अपनी इन दोनों बेटियों, एक बेटी और अपनी एक साली का सहारा लिया हो। उसे पता है हम एक ना एक दिन सबूतों तक पहुंच जाएंगे, इसलिए उन्होंने दोनों को इसके लिए तैयार कर दिया और अपनी साली को यहां भेज दिया, ताकि जब हम सबूतों तक पहुंचे तब उसकी साली एक्शन ले और हमारे पूरे मामले को चौपट कर दे, उसकी साली हमारे सभी सबूतों को पूरी तरह से मिटा दे। मैं जानता हूँ यार दत्ता को, रोहन बोला, लास्ट टाइम तुमने मुझे बताया था, तुमने मुझे सारी बात बताई थी। हाँ, निक बोला, और इंडिया में इसी वजह से गया था क्योंकि मैं इसकी फैमिली के बारे में जानकारी इकट्ठा करना चाहता था। ये इंडिया से है तो मुझे लगा मुझे इसके बारे में वहां से बहुत कुछ पता चल सकता है, पर वहां भी कुछ हाथ नहीं लगा, ना फैमिली का पता चला ना कोई और सबूत मिला। रोहन अपनी जगह से खड़ा हुआ और बोला, तेरी बाकी प्रॉब्लम मैं नहीं सुलझा सकता, लेकिन आई प्रॉमिस प्रियल ये सब क्यों कर रही है इसका पता अभी मैं लगा कर देता हूँ। प्रियल का एक साथ दो जगह पर होना ये कैसे पॉसिबल हुआ, यही मेरे ख्याल से हमारे लिए सबसे बड़ी दिक्कत है, और ये अकेले प्रियल और परी के बस की बात नहीं है, जरूर इनके साथ में कोई और भी इन्वॉल्व है। अगर इनका कोई प्लान हुआ तो इसमें बहुत सारे लोग शामिल होंगे। जीनी बोली, पर प्रियल इनोसेंट है, वो सच्चाई बताकर इस पूरे मामले को सुलझा सकती थी, लेकिन सच्चाई के बाद भी काफी बड़ा खतरा उसके सामने ही खड़ा था, तो वो सच्चाई बताने से हिचकिचा रही थी। एमा उस पर तंज कसते हुए बोली, लो इसे अभी भी प्रियल इनोसेंट लग रही है, यहाँ सब बात उसके खिलाफ है और ये उसे इनोसेंट करने में लगी हुई है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे उनकी टीम की एक मेंबर ये भी होगी, वरना किसी के कसूरवार होने पर कोई भी उसका इतना सपोर्ट नहीं करता। गलत दिशा में अपनी बात को लेकर मत जाओ एमा, जो बात है उस पर ही रहो, निक बोला और इस बात को यहीं बढ़ने से रोक दिया। रोहन जीनी की इनोसेंट वाली बात पर रिएक्ट करता हुआ बोला, हाँ वो बहुत इनोसेंट है, मगर यहाँ सब कुछ उसके अगेंस्ट है, पता नहीं इसके पीछे क्या बात है क्या नहीं, मगर जब तक सच्चाई पता नहीं चल जाती तब तक उसे सही नहीं कहा जा सकता, हमें उसे कसूरवार मानना ही होगा, अगर उसे कसूरवार मानेंगे तभी हमें सच्चाई के बारे में पता चलेगा। इतना कहकर वो वापस बैठ गया और दूसरे लोगों के चेहरों की तरफ देखने लगा। सबने जो कहना था वो कह दिया था, रोहन सच्चाई जानता था, मगर जिनी कुछ नहीं कह रही थी तो वो भी कुछ नहीं बोल रहा था। निक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड पोजीशन में था,
वो प्रियल को कसूरवार मान रहा था, मगर उसके दिल का एक कोना अभी भी उसकी सपोर्ट में था। उसकी सपोर्ट करने वाला कारण थोड़ा और मजबूत हो गया था, क्योंकि अब ये बात सामने थी कि प्रियल प्रभास दत्ता की बेटी नहीं है। ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी थी, मगर इसके शुरू होने के बाद जो दूसरी प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी, अब वही थी जो उसके लिए और बाकी सबके लिए समस्या बनी हुई थी। अब सब बस यही चाहते थे कि किसी तरह से इसका भी सल्यूशन हो और जो भी असल बात है वो सामने आए। कुछ ये चाहते थे कि प्रियल पूरी तरह से कसूरवार बने, और जबकि कुछ ये चाहते थे कि ऐसा बिल्कुल ना हो, प्रियल बेकसूर साबित हो।